ओम शांति। कैसा लगा कल का बाबा? कैसा लगा? बहुत अच्छा। कैसा था? प्यार का सागर था। कैसा लग रहा था हम सबसे मिलकर उन्हें? समझा प्रश्न? हम सबसे मिलकर बाबा को कैसा लग रहा था और हमें कैसा लग रहा था? बोलती नहीं माताएं। भाई अच्छा बोल रहे हैं। माताएं सोच रही, पता नहीं कैसा लग रहा था। अच्छा तो लग रहा था, पर क्या कहें? और गदगद हो रहे थे, तृप्त हुए बाबा से मिलकर, क्योंकि बाबा तो ऐसी शक्ति है कि वो एक मिनट में भी सबको बहुत कुछ दे सकता है। और शायद आप सभी ने नोट किया हो या न किया हो, बाबा कल पहले ही आ गया था। गीत शुरू हुआ, 2 मिनट में ही बाबा आ गए थे, बिना दादी के ध्यान में गए हुए। कर सकता है बाबा ऐसा? किया, जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे। ब्रह्मा बाबा थोड़ा ध्यान में जाते थे, आके बैठे और शिव बाबा आ गए। हमने तो 1 मिनट में ही महसूस कर लिया कि बाबा तो आ गए, लेकिन जब बाबा ने देखा ये न तो सफेद लाइट कर रहे, न ये गीत बंद कर रहे, इन्हें पता नहीं चल रहा, फिर उसे कुछ करना पड़ा थोड़ा सा, फिर खोल दी, आ गए बाबा। हुआ ना, बंद हुई और कितनी देर में फिर खुल गई, देखा ना, बहुत जल्दी। नॉर्मली जब दादी ध्यान में जाएगी तो कुछ तो लगेगा ना। तो बाबा बहुत प्यार में थे कल। मैं सोच रहा था कि प्रभु की लीला को साधारण रूप से नहीं समझा जा सकता। हम उसका केवल एक छोटा सा रूप देख लेते हैं, लेकिन उसको जानना कौन जान सकता है बाबा को? बताओ। जानना अलग चीज है। आज भी था ना मुरली में। नॉर्मली जब बाबा ये कहते थे कि मैं जैसा हूं वैसा ही जानकर मुझे याद करो, तो ज्योति स्वरूप, बाप टीचर सदगुरु। लेकिन इतना ही नहीं, बाबा को वही जान सकते हैं जो स्वयं को पूरी तरह जानते हो। और स्वयं को जानने के लिए बोलो, सोचना है आपको, ये गुह्य बात है। मैं आत्मा हूं यही जान लेना नहीं हुआ, ये तो पहला कदम है, 100 कदम और हैं इसके बाद। स्वयं को वही जान सकते हैं जो बहुत लंबा समय स्वमान में स्थित रहे, जिनकी बुद्धि बहुत स्वच्छ हो गई हो, जो बहुत लंबा काल योग युक्त रहते हो। योग युक्त रहने से हम स्वयं को भी पहचानते हैं और बाबा को भी। जैसे छोटा सा उदाहरण ले लें, आप किसी व्यक्ति को जानते हो, मैं उदाहरण दूंगा प्रसिद्ध, मान लो आप अपने प्रधानमंत्री को जानते हैं, मोदी साहब चीफ मिनिस्टर गुजरात के रहे हैं 3 बार, उससे पहले वो आरएसएस में थे, अब प्रधानमंत्री बन गए, वो ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं। लेकिन अगर हमें ये जानना हो वो क्या हैं, तो क्या करना होगा? मोटी बात है ये, उनके साथ रहना पड़ेगा ना, ताकि हम जान सकें वो कैसे व्यक्ति हैं। वो बहुत पावरफुल हैं, उनके विचार ऐसे हैं, हम कुछ बातें जानते हैं, मान लो हम उनके बारे में 10 बातें जानते हैं, लेकिन वो क्या हैं, उनके अंदर क्या है, कैसी फीलिंग्स हैं उनमें, व्यवहार कैसा है, गुणावगुण कैसे हैं, ये मनुष्य तभी जान सकता है जब वो उनके साथ रहे। और साथ रहने में भी एक चीज और है, आप किसी महान व्यक्ति के साथ तो रहते हो लेकिन उसको पहचानने का विवेक न हो तो साथ रहते हुए भी नहीं पहचान सकते। जैसे बाबा के साथ हुआ, बाबा के साथ साकार में भी कई लोग थे लेकिन वो रहे नहीं बाद में, क्योंकि वो बाबा को पहचान नहीं पाए थे। और उन्हें ये भी नहीं पता था, और अब भी बहुतों को नहीं पता, कि जो आत्मा महान तपस्या करके संपूर्ण बनी है उसके पास क्या क्या पावर्स, कितनी शक्तियां, कितने वरदान, कितनी सिद्धियां होंगी। और अब क्या है, वो नेक्स्ट टू गॉड, संपूर्ण शक्तियों से संपन्न, जो चाहे कर लें संकल्प से ही। तो बाबा को भी अगर हमें पूरी तरह जानना हो तो उनके साथ रहना पड़ेगा। कहाँ? ऊपर। अब यहाँ तो नहीं है वो, अब ऊपर रहना पड़ेगा। अब कैसे रहें ऊपर? कल की मुरली की कुछ झलकियां, क्या कहा बाबा ने, साकार का ये मिलन कितना सुंदर है, और ये सदा तो नहीं होता, थोड़े समय बाबा आते हैं, और इन दिनों को भी लोग याद किया करेंगे। अब भी याद करते हैं पिछले दिनों को, किसी के भी जीवन में पीछे सुंदर घटनाएं हुई हो मनुष्य उन्हें याद करता है ना। जो ज्ञान में पुराने हैं, जिन्होंने बाबा की दूसरी तरह की पालना देखी है, वो तो सोचते हैं अब तो बहुत हल्की पालना है, लेकिन जो अभी अभी आए हैं उन्हें लगता है यही सब कुछ है, हो गया नहीं। और जो आगे आएंगे उन्हें भी ऐसा ही लगेगा, वाह बाबा आ गए, बस 10 मिनट के लिए आ गए ना, ओ भगवान को देख लिया, तृप्त हो गए, क्योंकि उनके सामने कंपैरिजन नहीं होगा, तुलना नहीं होगी। तो हम सभी मिलन करेंगे। अब आज का टॉपिक हम रखते हैं, हमें बाबा से अधिक समय मिलन करना है। कैसे? चाहेंगे आप अधिक समय मिलन हो? कौन कौन चाहते हैं जरा देखूं मैं। अच्छा, चाहती हैं माताएं। तो मिलन कैसे होगा, एक मोटा सा उदाहरण देता हूँ। माताओं से मिलने के लिए कोई आया हो और माताओं ने अपने को कमरे में बंद कर लिया हो तो मिलेंगे? मेरा प्रश्न शायद आप समझ गए हो। यदि हमने अपने को देह के कमरे में बंद कर लिया हो तो प्रभु मिलन नहीं होगा, इसलिए पहले तो इस घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आप सभी चिंतन करेंगे, हम बाबा से अधिक समय मिलन करें और मिलन का अनुभव हो। अब तो बाबा दूर बैठते हैं, किसी को दृष्टि मिलती है, किसी को नहीं मिलती, कोई दृष्टि के प्यासे ही रह जाते हैं। लेकिन हम ऐसा कर लें कि रोज हमें बाबा से दृष्टि मिले, रोज कई बार या जितनी बार हम चाहें उनसे मिलन हो और उनका हाथ हमारे सिर पर आ जाए। पसंद है ये बात, रोज हो जाए तो अनेक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मैं एक बात रोज कहता हूँ सदा क्लासेज में, उस बात पे जरा ध्यान दें, कुछ चीजों को स्वीकार करना ही है। हर एक देख ले, मुझे क्यों याद आ गया, माता एक मिल रही थी, बैठी है क्लास में। समस्याएं हैं घरों में, बच्चे अज्ञान में नहीं हैं, उनकी अपनी इच्छाएं हैं, वो चाहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियों की ओर क्यों जा रही है, ये पता नहीं किसे पैसा दे आती है रोज 100 रुपए, वो सोचते हैं उन्हें क्या पता कि 100 का इंटरेस्ट बहुत जबरदस्त मिलना है। कितना इंटरेस्ट? संसार का कोई बैंक, स्विस बैंक, ये वो कोई नहीं दे सकता, मिलता है ना। लेकिन लौकिक बच्चे को क्या पता चले, वो सोचता सब मेरा, छोड़ दो उसे, ले लो, कहो तुम सब ले लो। कर सकती हैं माताएं या नहीं? कर सकती है। कौन कर सकता है ये? नहीं, हाथ नहीं उठाना, क्वालिफिकेशन बताओ। जिसको ये नशा होगा, ये धन संपत्ति, ये मकान दुकान, ये कुछ नहीं, हमारी साइड में कौन है, हमारे हिस्से में स्वयं भगवान, ले लो तुम अपना सारा हिस्सा, हमारे हिस्से में आया है, बोलो स्वयं भगवान। ये नशा हो जाए तो जिनके हिस्से में भगवान आ जाए, अर्जुन के हिस्से में याद है ना कहानी, दुर्योधन के हिस्से में सारी सेना और अर्जुन के हिस्से में श्री कृष्ण, विजय किसकी? भूखे रहे पांडव, वनवास भी हुआ, कष्ट भी हुआ, लेकिन सब कुछ ठीक होता रहा। हमें भी इतना विश्वास हो बाबा में, हमारी तरफ बाबा है, इसलिए हल्का करें अपने को, क्योंकि सभी माताएं खास ये बात समझ लें, सबसे बड़ी संपत्ति हमारी स्थिति है, बाबा तो है ही, सबसे बड़ी संपत्ति हमारे संकल्प हैं। अगर आप उदास रहने लगे, अगर आप विचलित हो गए, अगर खुशी खो दी, बच्चे सुधरेंगे तो नहीं उससे, या सुधर जाएंगे? आप परेशान रहने लगो, बच्चे सुधर जाएंगे? इसलिए थोड़ा सा डिटैच होकर, समझती है ना ये शब्द माता इंग्लिश का, थोड़ा सा न्यारे होकर उन्हें अच्छे वाइब्रेशंस दो और बाबा के इस ईश्वरीय नशे में आ जाओ। क्योंकि मैं ऐसी अनेक माताओं को जानता हूँ, बच्चे जिनको बहुत महान समझते हैं और ये कहते हैं कि हमारे पास जो कुछ है हमारी माँ के कारण है, क्योंकि वो बहुत महान है। ये सब खेल स्थितियों का है। मैं कहानी सुनाया करता हूँ महाभारत की, फिर सुना देता हूँ। युधिष्ठिर को युद्ध में एक बार झूठ बोलने के लिए 5 मिनट का नरक मिला था, मालूम है सबको, आगे कहानी सुनाने की जरूरत तो नहीं ना। अश्वत्थामा मारा गया। श्री कृष्ण की ये कूटनीति थी कि द्रोणाचार्य को तब तक नहीं जीता जा सकता जब तक वो हथियार न डाल दे। अगर वो सुन लेगा उसका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया तो मोह में हथियार डाल देगा, मुझे नहीं लड़ना है। तो युक्ति रची कि भीम अश्वत्थामा नाम के हाथी से युद्ध करके उसको मार दे और युधिष्ठिर अनाउंस करे अश्वत्थामा मारा गया। वैसा ही हुआ, युधिष्ठिर ने अनाउंस कर दिया अश्वत्थामा मारा गया। बहुत अच्छी प्लानिंग की थी कि द्रोणाचार्य पूछेगा दोबारा युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर सच है कि अश्वत्थामा मारा गया? उसने फिर से बोला अश्वत्थामा मारा गया और ढोल बजे खूब, बाजे जो थे ना रण में जो बाजे होते जोर से बजाए। और फिर युधिष्ठिर ने धीरे से बोल दिया नर नहीं पशु, वो उसको सुना नहीं क्योंकि वो ढोल धमाके इतने तेज बजवाए थे, वो श्री कृष्ण की कूटनीति थी, इतने तेज बजवाए थे कि झूठ भी ना हो और सच भी ना हो, काम बन जाए। तो था तो झूठ ही, दिखाया तो ये। अब ये बात है तो अलौकिक कि युधिष्ठिर का जो रथ था वो जमीन से 1 फुट ऊंचा चलता था, लेकिन जैसे ही उसने झूठ बोला तो जमीन पे चलने लगा, नीचे गिर गया। अब ये अगर लोग देखते तो वो तो आप ही समझ जाते गड़बड़ हो गई। लेकिन ये कहानियां हैं, इनके आध्यात्मिक रहस्य हैं। तो 5 मिनट का उनको नर्क हुआ और देवदूत उन्हें नर्क में ले गए। 5 मिनट पूरे हो गए, वापिस जाने लगे तो नर्क के निवासियों ने आवाज लगाई। ये बात बहुत काम की है, हम सबके रहस्य भरी, कि महाराज युधिष्ठिर हमें छोड़कर न जाओ। ने पूछा क्यों? क्योंकि आपके यहाँ खड़े रहने से हमारी नर्क की पीड़ा खत्म हो गई है। बोलो क्यों हो गई थी? उनके वाइब्रेशन से। ये बात हम सब के लिए है, जिनके घरों में वाइब्रेशन श्रेष्ठ होंगे, बच्चे चरित्रवान, आज्ञाकारी, सपूत, और जिनके स्थिति अच्छी नहीं, मैं पहले माताओं से बात कर रहा हूँ, जिन माताओं की स्थिति अच्छी नहीं है, जो परेशान रहती हैं, जो व्यर्थ में रहती है, जरा खुला बोल रहा हूँ, डोंट माइंड, जो परेशान रहती हैं, जो परचिंतन में रहती हैं, जो सारे गांव के समाचार इकट्ठे करके रखती हैं, जो गांव की पत्रकार हैं, जिन उनके वाइब्रेशंस उनके परिवार पर निगेटिव जाते हैं। कुछ माताएं ऐसी होती हैं जिनसे सारे शहर के समाचार पूछ लो, किसके घर में क्या हुआ, किसकी लड़की ने क्या किया, किसकी बहू अच्छी है, किसकी खराब है, सब पता उन्हें। इससे क्या नुकसान है? सारे संकल्प उसमें चले जाते हैं। जो शक्तियां हैं आत्मा की, मान लो सवेरे उठ के योग भी लगाया हो, वो शक्तियां इन सब संकल्पों में बहकर नष्ट हो जाती हैं। इसलिए सभी इस रहस्य को अच्छी तरह जान लें। अब बाबा के शब्द, स्वस्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां कुछ भी नहीं, तुरंत चेंज हो जाएंगी। और स्वस्थिति का आधार है श्रेष्ठ स्वमान। ये वाइब्रेशंस बहुत जबरदस्त चीज है। हम श्रेष्ठ स्वमान के द्वारा अपने वाइब्रेशंस को सुंदर बनाएं, अपनी स्थिति को अच्छा बनाएं। केवल स्वमान नहीं, पूरा ध्यान देना है स्थिति पर। हम क्या सोचते हैं, हमें क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं, एक सुंदर सा काम करें अपने लिए, वर्क करें। मुझे ये सोचना है ये नहीं, जो कुछ मैं सोच रहा हूँ क्या इससे फायदा है? क्या हम परचिंतन के लिए बाबा के पास आए हैं? अपने से बात करेंगे, विशेष रूप से जब यहाँ हैं इस सुंदर श्रेष्ठ तीर्थ पर, तो सोचना है। तीर्थ मेरे मुख से निकला तो एक माता का सुंदर अनुभव याद आ गया मुझे आज। वो बता रही थी मुझे, कभी बात की होगी फोन से मेरे से, मैंने क्या बताया वो तो मुझे याद नहीं रहता। मैंने उसे ये कहा था कि अपने घर में एक बोर्ड लिख दो, हमारा ये घर महान तीर्थ है। उसने लिख दिया था और सचमुच उसका घर महान तीर्थ बना हुआ है। क्योंकि शब्दों में भी वाइब्रेशंस होते हैं, इसलिए बाबा के अच्छे स्लोगन्स वो भी वाइब्रेट करते हैं बहुत कुछ। अपने घरों में सुंदर स्लोगन भी रखने चाहिए। कहा ऐसा अच्छा हो गया है कि चारों ओर ये आवाज है, इनका घर तीर्थ है। किसी को शांति चाहिए वहां जाओ। तो अपने घरों को तीर्थ बनाने के लिए माताओं का परम कर्तव्य है अपनी स्थिति को बहुत अच्छा बनाएं। अच्छा बनाना अपने हाथ में है। हाथ में है या नहीं? हो सकता है ये काम माताओं से थोड़ा सा डिटेच करें अपने को और बातों से, अंतर्मुखी करें, समस्याओं में अपने को इतना ना उलझा दें कि उससे निकलना ही ना आता हो। ये चक्रव्यूह की बात संगम युग की है। कुछ आत्माओं ने अपने को इतना उलझा दिया है कि उनसे निकलना आता नहीं है। अब निकलना है, मार्ग है, बाबा रोज वो मार्ग बता रहा है। देखो तबीयत के लिए भी कल बाबा एक दो को कह रहे थे, तबीयत के संकल्प बाप को दे दो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो सोचते ज्यादा हैं, बीमार कम होते हैं, सोचते ज्यादा हैं, सोचने से और ज्यादा बढ़ जाती है बीमारी। मैं तो अपनी एक डॉक्टर की बात सुनाऊं आपको, अभी पता नहीं हॉस्पिटल में है या नहीं, आयुर्वेदिक डॉक्टर, आप हैरान होंगे, आयु 50 साल से ज्यादा। कहा मुझे शुगर 660, सोचो। कहा लोगों ने कहा जलेबी न खाना, भोग में जलेबी बनती है ना, मैं तो खुले आम खाती हूँ। दांत में दर्द हुआ, डॉक्टर ने कहा घाव भरेगा नहीं, शुगर बहुत है। मैंने कहा मुझे ठीक कराना ही नहीं है, शुगर होने दो, मुझे सब खाना पीना है, दांत भी ठीक, शुगर का भी कोई असर नहीं। मैं हैरान उसकी बात सुन के, वो डॉक्टर है, होगी यहाँ अहमदाबाद की है, सेवा करने आई थी, अपॉइंट थी, मुझे पता नहीं, मैं तो कुछ पूछने गया था उनसे। मैं सोच रहा था देखो मनुष्य की मन की शक्ति उसे कितना बल देती है, और कुछ लोग ऐसे हैं जरा सी शुगर हुई मरे, बस हाय मरे, शुगर हो गई, मर गए, भोग नहीं खाना, टच भी नहीं करना है, शुगर हो गई हमें तो इसकी जरूरत नहीं। थोड़ा अपने मन को स्ट्रांग करना है। मैं देख रहा हूँ माताओं के चेहरे, कुछ लोग सोच रहे हैं बड़ा कठिन काम है, करना है। कुछ चीजों को स्वीकार करके अपने को हल्का करो, पक्का कर दो, प्रभु मिलन के सुंदर दिन हैं, सुंदर और समाप्ति की ओर, खेल समाप्ति की ओर है। हमें वो सब बातें याद आती हैं जो बाबा ने 69 में बताई थी, जब बाबा से दादियां पूछती थी बाबा यह अव्यक्त पाठ कब तक चलेगा, थोड़ा पंखा, यह अव्यक्त पाठ कब तक चलेगा, तो जो लक्षण बताए थे वो सब अब हो रहे हैं। अब ये पाठ भी समाप्ति की ओर है, इसलिए जिसको जितना भाग्य बनाना हो बना सकते हैं, क्योंकि विनाश काल में पुरुषार्थ होगा नहीं, वाइब्रेशन से नहीं होंगे पुरुषार्थ के। केवल वही पुरुषार्थ कर पाएंगे जिन्होंने लंबा काल किया है, तब समझ में आएगा कि बाबा जो कहते थे लंबे काल का अभ्यास चाहिए उसका क्या मतलब है। माताओं को आगे भेज दो, उसका क्या मतलब है। लंबा काल का अभ्यास ही संस्कारों को बदलता है, लंबे काल का अभ्यास ही समय पर बुद्धि को स्थिर रख सकता है, अन्यथा बुद्धि विचलित हो जाती है। तो अब हमें लगातार मिलन करना है, एक अभ्यास भी रोज दो बार अवश्य करेंगे। बैठा दो भाई, बैठा लो, दो बार एक अभ्यास सुने आप, वो अभ्यास सबको करना है, अब सोते समय और सवेरे उठकर, 6 बजे तक कभी भी, शाम को कभी भी, लेकिन अब सोने से पहले एक बार अवश्य करना है। अपने को ले चलेंगे सूक्ष्म लोक में, मेरे साथ साथ चलो, अपने को ले चलेंगे सूक्ष्म लोक में, सूक्ष्म लोक बिल्कुल स्पष्ट देखेंगे, सफेद प्रकाश, यहाँ आनंद के वाइब्रेशंस हैं, चारों ओर परम आनंद, फरिश्ते देखे वहाँ, उड़ उड़ कर फरिश्ते आ रहे हैं, फरिश्तों की ये दुनिया है। फिर अपने सामने देखेंगे बाप दादा को। ब्रह्मा बाबा का बहुत डिवाइन स्वरूप दिव्य, अंग अंग से किरणें फैल रही हैं और बाबा के मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। कंसंट्रेट कर देंगे, एकाग्र कर दें अपने को, शिव बाबा ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं और फिर दृष्टि दे रहे हैं। अब इस दृष्टि का आनंद लें, इस दृष्टि से बहुत सुख मिलेगा। आधा मिनट ले लें और फिर फील करें बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। अपनी हजार भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी, वरदान दिया। रोज करेंगे, ठीक है, रोज 5-5 मिनट। इसे योग बहुत अच्छा लगने लगेगा, योग में एकाग्रता हो जाएगी, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। ब्रह्मा बाबा के तन में महाज्योति पर एकाग्र करेंगे तो परम धाम में भी स्थिर होना सहज हो जाएगा। और ये ड्रिल करें, ये ड्रिल बहुत पहले सिखाई थी बाबा ने, एक संदेश में सुनाई थी, ये तब तक केवल मधुबन था, ज्ञान सरोवर श्यामतीवन नहीं था। गुलजार दादी के द्वारा एक संदेश में बाबा ने ड्रिल सिखाई, मैं फरिश्ता हूँ, आत्मा ब्रकुटी की कुटिया में, देह प्रकाश का, फिर यहाँ से चले सूक्ष्म लोक में, बाबा से मिलन स्तर है, फिर वहाँ से आत्मा बनकर चले परम धाम में शिव बाबा के पास, फिर वहाँ से वापिस सूक्ष्म लोक में, फिर वहाँ से वापिस इस देह में। ये ड्रिल हमारे योग को बहुत सरल बना देती है। मुझे याद रहता है उस टाइम हमारे यहाँ एक कन्याओं का ग्रुप आया हुआ था, छोटे छोटे बच्चे थे उसमें से, 10 साल से 15 साल तक के, तो हम उनकी क्लास कराया करते थे, तो उनको ये ड्रिल सिखाई और कहा कल 5 बार कर लेना। अगले दिन जब उनसे पूछा तो कईयों का अनुभव था योग में रस आने लगा, योग करने को मन करने लगा, इंटरेस्ट पैदा हो गया। सभी इस ड्रिल का अभ्यास करेंगे और सूक्ष्म लोक में बाबा से मिलन दृष्टि लेंगे, सिर पर वरदानी हाथ महसूस करेंगे। पसंद है, करेंगे सभी, हो जाएगा। और ये प्रैक्टिस हमारे चित्त को बहुत सुख देती है। आज की मुरली में भी ये सब था, बहुत सुख। और पारस बुद्धि कौन, ठहरो माताएं बताएंगे, भाइयों ने तो उत्तर दे दिया, माताएं हैं, शांत चित्त नहीं। पारस बुद्धि वे हैं जो 50% से ज्यादा नंबर लें पढ़ाई में। बताया ना राम को फेल होते दिखाया, किस में फेल हुआ राम, कई लोग गलत समझते हैं, नहीं माया से नहीं, योग में फेल। ये उत्तर है मुरलियों में सब, क्यों कई लोग सोचते हैं कि शायद राम की आत्मा माया से हार गई, माया से हारने वाले तो विश्व महाराजन बनेंगे ही नहीं, योग में कम नंबर रह गए, 25 नंबर आए योग में, सेवा में आ गए 100, तो प्रजा बहुत मिल गई, मिल गई ना प्रजा, लक्ष्मीनारायण से ज्यादा प्रजा मिल गई। तो हम सभी बाबा के साथ रहेंगे, योग युक्त रहना माना बाबा के साथ रहना। संकल्प करें सभी, आप सभी जो मधुबन में आए हैं, जो विदेश की बहनें माताएं बैठी हैं और भाई, संकल्प करें हमें यहाँ अधिक से अधिक योग युक्त रहना है। बैठकर नहीं, कई लोग सोचते हैं ये काम बैठने का है, बैठने वाले कभी योग युक्त नहीं हो सकते, इसको बहुत नेचुरल बनाना है। मैं दो चार प्रैक्टिस आपके सामने रख देता हूँ, उनको आप कल परसों तीन दिन तक जरा अधिक बार अपने अभ्यास में ले आए। सभी सेवाधारी बहने भाई भी एक छोटा सा संकल्प जो आप सब जानते हैं, बाबा मेरे साथ है, चाहे तो गीत गाने लगना, कौन सा, ईश्वर अपने आगे, तो डर भी खत्म हो जाए। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, किसी भी तरह का छोटे से छोटा डर भी रहे नहीं, डर के लिए हमें सावधान रहना है। मैं ये बात आपको क्लास में कह दूं, भय अनेक आत्माओं में बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? पूर्व जन्मों की कई चीजें मनुष्य को भयभीत कर रही हैं। आज ही चार लोग आए होंगे ऐसे मेरे पास नीचे, जिन्होंने कहा बहुत डर लगता है। एक का है कि उसे सपना आते हैं कि नदी है और वो नदी में गिर गई और भयभीत होके उठती है, एकदम आंख खुलती है। क्या है ये? पूर्व जन्म में नदी में डूबने से मृत्यु हुई है, वो सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है, वो स्वप्न के रूप में जागृत होता रहता है। कईयों के पास कोई ऐसी उनसे गलती हुई है पूर्व जन्मों में जो उन्हें डराती हैं। अब तो बहुत सुंदर छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा नहीं तो 21 टाइम सवेरे उठते ही मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ, और इस माता को मैंने बताया सोने से पहले यही संकल्प करना है, और मैं आत्मा अमर हूँ, मैं मरती नहीं। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस। तो वो जो पिछले जन्म की घटना अंतर मन पे छाई हुई है जिसको भयभीत कर रही है वो समाप्त हो जाएगा। और एक तीसरी विधि भी होती है, क्योंकि इनकी मृत्यु पानी से हुई थी तो पानी को 10 मिनट रोज कुछ दिन तक पवित्र वाइब्रेशंस दे दो, ताकि पानी हमारा गुड फ्रेंड बन जाए। समझते हैं ना ये भाषा? क्योंकि पानी और अग्नि सबसे ज्यादा विनाश का काम करेंगी, तब वो गुड फ्रेंड तो नहीं होंगे ना। तो इनको अगर हम वाइब्रेशंस देंगे तो विनाश काल में वो हमें सुरक्षित करेंगे। तो हमें बाबा से योग युक्त होना है। एक प्रैक्टिस बाबा मेरे साथ है, इसी से जुड़ी हुई दूसरी प्रैक्टिस कि सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है। बहुत पावरफुल योग है, और सभी भाई बहने 10 बार इसको कर लें या ऐसा संकल्प कर लें, हर घंटे में 2 बार कर लेना है, जितनी देर भी कोई कर सके, हर घंटे में 2 बार सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है, 7 हो गया। इसको एक कंबाइंड स्वरूप कहते हैं। कंबाइंड स्वरूप को इसी सहज रूप से सब जान लें, नीचे मैं शिव शक्ति और सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान, नीचे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान और सर्वशक्तिवान छत्र छाया। सभी इसको अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे, और मैं तो ये कहूंगा सभी भाई बहने इस पर मास्टरी कर लें, समझे ना, मास्टरी, बहुत प्रैक्टिस कर लें, इस पे अधिकार हो जाए और 1 सेकंड में हम इसमें स्थित हो जाएं, तो क्या होगा? इसी हॉल का मुझे एक सीन याद रहता है, 74 में ये हॉल बना, इस पर 3 की छत थी, ये बाद में अभी पड़ी है, और ये हॉल अभी तैयार नहीं हुआ था, दीवारों पे केवल सीमेंट हुआ था, नीचे का फ्लोरिंग भी नहीं हुआ था, अभी वो रोडियां पड़ी हुई थी। तो बाबा को इस हॉल में बुलाया, आप सोचो भगवान भी कहाँ कहाँ आता है। मनुष्य तो रहने के लिए कितने अच्छे मकान मांगता है। तब यज्ञ में इतने गद्दे आदि भी नहीं थे, चादरें बिछाई थी वो मोटी मोटी, वो चुभती भी थी नीचे। हम तो सोचते थे एक्यूप्रेशर हो रहा है, हमें तब ज्ञान था एक्यूप्रेशर का, क्योंकि भाई बहने ज्यादा आए थे तो छोटे हॉल में जगह नहीं थी और बरसात के दिन थे। टिन की छत पड़ी थी तो ये कैंची पड़ती है ना, उसे कैंची कहते हैं, वो लोहे के एंगल्स। तो क्या हो रहा था, जब बाबा की मुरली चल रही थी तो एक तो दो तीन बार लाइट गई, तब हमारे पास जनरेटर नहीं होते थे, और हवा इतनी तेज चलती थी बीच बीच में कि वो जो कैंची थी ना वो 4 इंच ऊपर उठ जाती थी, ठक फिर गिरती थी। भगवान यहाँ बैठा है और प्रकृति नजारा दिखा रही है, और बिजली चमकती थी ना तो बाहर की लाइट अंदर आती थी, लेकिन हम तो निश्चिंत बैठे थे प्रकृति का मालिक ही बैठा है, यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है। तो बाबा ने ये सब देखकर ये सुंदर बात तब कही थी, तब से मुझे याद है, 74 की बात है ये, कि जो आत्माएं बाप से कंबाइंड रहेंगी, प्रकृति यदि विनाश भी करती आ रही होगी तो उनसे 1 फुट दूर आकर शांत हो जाएगी, उनका नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि वो हो जाएंगे प्रकृति के मालिक। इस कंबाइंड स्वरूप का बहुत बड़ा इफेक्ट होगा, गोलियां चलने लगी हों तुरंत छत्र बना लें बाबा को, आपको लोग देखेंगे ही नहीं, आप सुरक्षित वहां से निकल जाएंगे। बम फेंक दिया हो बाजार में किसी ने, आपको एकदम आवाज हो गई हो, बम डाल दिया, भागो भागो, आप भागो नहीं, कंबाइंड स्वरूप में स्थित हो जाएं, जब तक आप बाहर नहीं निकल जाएंगे बम फटेगा ही नहीं, फटेगा ही नहीं, बल्कि आपके कारण सब सुरक्षित हो जाएंगे। ये सब बहुत सुंदर अनुभव विनाश काल में योग युक्त आत्माओं को रहेंगे। तो इसलिए इस पर मास्टरी कर लें आप। और तीसरी प्रैक्टिस एक और बहुत सुंदर है वो भी, ज्ञान सूर्य शिव बाबा आंखों के सामने है, ये बाबा के द्वारा सिखाई गई है कि बाबा परम धाम से नीचे उतरकर हमारी आंखों के सामने आ गया। जिनको अपने योग को, अपनी एकाग्रता को बहुत सुंदर करना हो, वो बाबा को परम धाम से उतरते देखें, ज्ञान सूर्य उतर रहा है और उतरकर सामने आ गया, 10 फुट दूरी पर है, 5 फुट सामने से उसकी किरणें पड़ रही हैं। बहुत सहज योग और मोस्ट पावरफुल, ये दोनों योग के अभ्यास, छत्र छाया, ज्ञान सूर्य आंखों के सम्मुख, ये ज्वाला स्वरूप योग है। इसे विकर्म विनाश होंगे, इसे आत्मा की शक्तियां बहुत बढ़ेंगी और बहुत सहज होगा। लेकिन सहज किनको होगा, जो प्रैक्टिस करेंगे। सारी बातें एक तरफ और प्रैक्टिस दूसरी तरफ, बार बार प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस। मैंने आपको घंटे में 2 बार करने को कहा, पर अगर आप 10 बार कर जाएं, एक एक मिनट केवल, अगर 10 बार कर लें तो सारा दिन परम आनंद में बीतने लगेगा। मैं बहुतों को सिखाता हूँ, जब बाबा आते हैं उससे पहले छोटी क्लासेज होती हैं ग्रुप्स की, मैं सबको सिखा देता हूँ, तीन तीन दिन, कोई चार चार दिन क्या क्या अभ्यास करें। कुछ माताएं भी बहुत ज्यादा कर लेती हैं। मैं जब माताओं की स्थिति सुनता हूँ तो मुझे बहुत आनंद आता। आज भी एक माता आई, योग की बात कर रही थी, कहा हम तो अपने घर में 2 माताएं थी, वो 5-7-8 घंटे योग रोज कर ही लेते हैं। उनके शब्दों से ही लग रहा था कि उनके लिए सहज है, सारा सुनाया हम सारा दिन ये अभ्यास करते रहते हैं, सब खुश हैं हमसे, क्योंकि श्रेष्ठ स्थिति होने से सब कुछ स्वतः ही अच्छा हो जाता है। और माताओं के हाथ में सबसे बड़ी चीज है भोजन। मैं बार बार कहता हूँ आप सबको, मंत्र बना दो, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ब्रेन को भी बहुत पावरफुल एनर्जी जाएगी, बहुत सुंदर हो जाएगा, व्यर्थ भी खत्म हो जाएगा। तो 3 दिन सभी बहुत सिंसियरली, सच्चे मन से, स्वेच्छा से, मेरे कहने से तो नहीं होगा, स्वेच्छा से, ठीक है, इच्छा जरा जागृत करो अपने अंदर कि हमें बाबा से मिलन करना है, यही हमारी मधुबन की यात्रा की सफलता है, और ये अनुभव आपको बहुत काम आएगा। बात तो मुझे एक और याद आ रही है, 3 मिनट बचे हैं। बाबा ने विदेशियों को कभी ये अभ्यास दिया 1 साल के लिए कि बाबा सिर पे छत्र छाया है, इसका अभ्यास करना। और दूसरा अभ्यास था, बाप तुम्हारा है, बाप को यूज करना। बहुत साल पहले की बात है, 1 साल बीत गया, फिर वही दिन आए मार्च, और बाबा ने पूछा, भोग लगा बाबा को कि बच्चों को काम दिया था, बाप तुम्हारा है, बाप को यूज करना। अब ध्यान से सुन लेना और फायदा उठाना इस सुंदर अवसर का, ये मोस्ट ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, बाबा ने कहा। लेकिन बाबा तो वतन में इंतजार ही करता रहा, कब मेरे बच्चे मेरे पास आए, कोई गया ही नहीं यूज करने के लिए। भगवान हमारा है, हमारे लिए है, हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है, अधिकार से उसे यूज करें तो जीवन की यात्रा सरल हो जाएगी, ठीक है। तो सभी 3 दिन करेंगे, कौन कौन करेंगे जरा हाथ उठा लो, फिर योग करेंगे, आधे या सारे। कुछ माताएं सोच रही, पता नहीं क्या बता दिया, सेवाधारी माताएं, करना है सबको। परेशानियों की ना सोचो, परेशानी आपसे परेशान होकर भाग जाएं, हो जाएंगे या नहीं, आप परेशान ही ना हो, इतना स्ट्रांग कर दो अपने को कि परेशानियां आपसे परेशान हो जाएं, कि तो हमसे हमारी सुनते ही नहीं, भागो यहां से, ठीक है। चलो अब हम सभी 3 मिनट बैठेंगे सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान और बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया।
प्रभु का ध्यान।